अष्टावक्र ये वचन कह रहे हैं, किसी पामर के लिए नहीं, विषय के लिए नहीं, जिज्ञासु के लिए ही कह रहे हैं। और जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत उपासक और दूसरे होते हैं अकृत उपासक। जय जय। कृत उपासक जो होते हैं उनको ये वचन तुरंत असर कर लेते हैं और अकृत उपासक को हिम्मत देते हैं, अकृत उपासक को कुछ सोचने का मौका देते हैं, अकृत उपासक को बीज का काम देते हैं। बीज बो दिया, जमीन में दबा दिया है, कभी न कभी संयोग मिलेगा, पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, कभी न कभी हो जाएगा। जिसने उपासना की हुई है उसको तो ये वचन एकदम तुरंत ही बैठ जाएंगे, अनुभूति के रूप में प्रकट हो जाएंगे। और बात नितांत सत्य है, न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु जो न वा भवान एषाम साक्षिणाम आत्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये। तू पृथ्वी नहीं, जल नहीं है, तेज नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, तू इनका साक्षी मात्र है। शरीर में पृथ्वी का हिस्सा है, जल का हिस्सा है, तेज का हिस्सा है, वायु का हिस्सा, आकाश का हिस्सा है। शरीर में पित्त और कफ अधिक है तो आदमी मोही होता है, वात अधिक है तो काम ही हो सकता है, वायु तत्व अधिक है तो, आकाश तत्व का हिस्सा ज्यादा है तो काम क्रोध ही आकाश के हैं। तो ये जो पृथ्वी के, जल के, तेज के, वायु के गुण हैं, वो शरीर के केमिकल्स हैं। आत्मा तो भी है, वो व्यक्ति तो भी है, लेकिन शरीर में अमुक अमुक हिस्सा होता है तो अमुक अमुक उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये है तो पांच भूतों के, और जब हम अपने को खो देते हैं, उसमें बह जाते हैं, तो जिस समय जिस हिस्से का प्रभाव होता है हम उससे दब जाते हैं। कभी सत्वगुण का प्रभाव होता है तो हम अपने को दानी, धर्मात्मा, सज्जन, श्रेष्ठ मानते हैं। कभी रजोगुण का प्रभाव होता है तो पांच भूतों में तीन गुण होते हैं, सत्व, रजो और तमो। तो तीन गुणों में भी मिश्रण होता रहता है, सत्व मिश्रित रजो, रजो मिश्रित सत्व, उसमें भी परसेंटेज होते हैं। सत्वगुण के 10% और रजो के 40% और तमोगुण के 50%। अब उनमें न्यून अधिक समझ लेना, तमोगुण के 55% तो दूसरे के 2-5 कम। तो जैसे जैसे गुणों के प्रभाव घटते बढ़ते हैं ऐसे तुम्हारे ख्याल भी घटते बढ़ते रहते हैं। सच पूछो तो तुम्हारे ख्याल घटते बढ़ते नहीं रहते हैं। किसके घटते बढ़ते हैं? मन के। यदि ख्याल घटने बढ़ने से आप अपने को बड़ा और छोटा मानते हैं तो जो बड़ा है उस समय तुम छोटे नहीं, और जिस समय छोटे हो उस समय बड़े नहीं, लेकिन छोटापन बड़ापन दिन में न जाने कितनी बार आता है चला जाता है। तुम वही के वही हो। बड़पन के विचार आए मन में, वो भी चले गए। छोटेपन के विचार आए, चले गए। तंदुरुस्ती के विचार आए, चले गए। क्रोध के विचार आए, चले गए। काम के विचार आए, चले गए। लोभ के विचार आए, चले गए। मन में काम हो गया, आ गया, तुमने कहा कि मैं कामी हूं, बड़ा सेक्सी हूं, तोबा तोबा। वातावरण बदल गया अथवा नीचे उतरे, नीचे आप अधिक समय नहीं रह सकते, काम के केंद्र नीचे है। सरोवर के तह में आप नहीं रह सकते, सरोवर के ऊपर तो आप काफी समय सैर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं नाव में आदि में, लेकिन सरोवर के एकदम नीचे तल में नहीं रह सकते। ऐसे ही काम क्रोध आदि आप सतत नहीं कर सकते। सच पूछो तो आप करते भी नहीं है। जय जय। जब अष्टावक्र मुनि का उपदेश समझ में आ जाए, कद उपासक हो, उपासना की हुई हो, कुछ हृदय शुद्ध हो, विवेक वैराग्य जरा तगड़ा हो जाए, तो आपको लगेगा कि मैं कामी क्रोधी नहीं होता। शरीर के अमुक हिस्से में अमुक घटना होती है। अब ये अमुक हिस्से में अमुक घटना होती है, अमुक वातावरण से अमुक विचार आते हैं, और जिसमें विचार आते हैं वो आत्मा नहीं, जिसमें घटना घटती वो आत्मा नहीं, और जो आत्मा नहीं वो मैं नहीं। जो आत्मा नहीं है वो मैं नहीं। मैं और आत्मा एक ही चीज के दो नाम हैं। कृष्ण बड़े मजे की बात कह रहे हैं, अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु। अयम आत्मा, ये जो मैं आत्मा हूं, ब्रह्म रूप में और सब भूतों में हूं। तो आत्मा की सत्ता से अब एक बात और ऊंची समझ लेने की है कि जड़ में क्रिया करने की शक्ति नहीं और चेतन सदा निष्क्रिय है। पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी के हिस्से में ढूंढो तो काम नहीं मिलेगा, जल में देखो तो द्रव्यता नहीं मिलेगी, लोभ मोह नहीं मिलेगा। तो और ये हमारा शरीर जो है पृथ्वी जल तेज वायु का रूपांतर ही तो है, और क्या है? तो पांच भूत कारण है और ये उसका कार्य है। और कार्य मजे की बात है कि कार्य बिना कारण के रह भी नहीं सकता। जैसे कपड़ा में रुई कारण है और कपड़ा उसका कार्य है, तंतु और रुई, रुई समझो तंतु समझो, तो तंतु निकाल दो रुई निकाल दो तो कपड़ा नहीं बचेगा। तो अभी भी कपड़ा रुई का ही तो रूपांतर है, रुई ही तो है, रुई निकाल दो तो कपड़ा नहीं बचेगा। ऐसे ही शरीर से पांच भूत निकाल दो तो शरीर नहीं बचेगा, शरीर तो नहीं बचेगा, फिर भी मैं बचता हूं। जय जय, मर जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं, हजारों हजारों शरीर चले गए लेकिन मैं गया नहीं। जो नहीं जाता उसका नाम आत्मा है, जो नहीं मरता उसका नाम है अमर आत्मा। मजे की बात है, हम हैं अमर लेकिन मरण धर्मा पंच भौतिक शरीर के साथ तादात्म्य हो गया, अन्योन्य अध्यास हो गया। तो शरीर के सुख में हम सुखी, शरीर के दुख में दुखी, शरीर के मोटापन में मोटे, शरीर के छोटेपन में हम छोटे, शरीर के गोरेपन में हम गोरे और शरीर के कालेपन में हम काले। ये भ्रांति जब तक रहेगी तब तक तुम कितने ही यज्ञ करो, कितने ही तप करो, कितनी ही माला घुमाओ, फिर भी दुर्भाग्य से पूर्ण मुक्ति नहीं होगी। ओम 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 ओम। हाँ, माला घुमाते घुमाते शायद सत्संग में रुचि हो जाए, जप करते करते तप करते करते शायद खोज की एक चिंगारी आ जाए। ये अवंतर साधन है लेकिन प्रत्यक्ष साधन तो आत्मज्ञान है। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्यो न वा भवान एषाम साक्षिणाम आत्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये। उस चिद्रूप को जानकर तू मुक्त हो जा अजर, हो जा अमर। तो चेतन आत्मा निष्क्रिय है और जड़ पांच भूतों में क्रिया करने का सामर्थ्य नहीं। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, चेतन में क्रिया नहीं और जड़ में सामर्थ्य नहीं, तो फिर कैसे हो रहा है? जैसे मैग्नेट अपनी जगह पर होते हुए भी लोह चुंबक, उसकी रश्मियां, उसका प्रभाव लोहे के कणों पर पड़ता है, ऐसे ही चैतन्य अपने महिमा में ज्यों का त्यों होते हुए भी इस जड़ में क्रिया करने का, स्पंदन करने का सामर्थ्य आ जाता है। और जड़ उसे बोलते हैं जो घनीभूत चीज हो। घनीभूत का नाम जड़ है और जो सूक्ष्म हो उसका नाम चेतन है, एक ही तत्व। तो तू पृथ्वी जल वायु तेज आकाश नहीं है, तू चिद्रूप है, इसको जानकर सुखी हो जा। व्यवहार में देखा जाए कि तुम्हारा शरीर छोटा था, जवान हुआ, दिन में कितने ही व्यवहार हुए, रात्रि को स्वप्न आया और गया, रात्रि की गहरी नींद आई और गई, लेकिन इन सब को देखने वाला यदि जाता तो उसकी स्मृति कौन करता? तो तुम गए नहीं, शरीर पर से गुजर गए, शरीर के हिस्से बदल गए कितने, लेकिन तुम अबदल हो। तुम अबदल हो ऐसा यदि तुम अपने को मानने लग गए और मानते मानते फिर जानोगे, जो मानेगा नहीं वो जानेगा कैसे? बच्चा पहले मानता है पृथ्वी गोल है, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, मानता है, जानता नहीं है, लेकिन मानते मानते पढ़ते पढ़ते वो अब जानने को उत्सुक हो जाता है, जान लेता है। ऐसे तुम मानने लग जाओ कि ये मैं नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं। और मजे की बात है कि वेदांत फिलोसॉफी में अहम कभी इदम नहीं होता और इदम कभी अहम नहीं होता है, मैं कभी तू नहीं होता और तू कभी मैं नहीं होता। जिसको तुमने यह कह दिया वो मैं नहीं होता, यह फूल भले प्लास्टिक का है लेकिन यह है, तो मैं नहीं हुआ। ये माइक, तो मैं माइक नहीं। ये बाल, तो मैं बाल नहीं। ये हाथ, तो मैं हाथ नहीं। ये नाक, मलंग, तो मैं मलंग नहीं। श्री राम। ये कान, तो मैं कान नहीं। ऐसे ही ये मन, तो मैं मन नहीं। मेरा मन जो तुम्हारा है वो तुम नहीं हो। सीधी सी बात है, एकदम साफ है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग इन बातों से दूर चले आए और समझते कि कहीं देव है, कहीं खुदा है, कहीं अल्लाह है, कहीं भगवान है, कहीं ठाकुर जी है, और इतना इतना करो, इतना इतना शोधो, इतना इतना मजूरी करो, तब कहीं वो सुनेगा, तब कहीं आएगा। ओम 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 ओम। जब जब सुनता है तो तुम्हारे अंतर्मुखता से सुनता है, जब जब आता है तो तुम्हारे दिल के द्वारा ही आता है। एक सम्राट बैठा था सिंहासन पर, नर्तकी आई, नाची खूब, बोलता वाह 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 क्या मजा है। जब वाह वाह कर रहा है, मजा आ रहा है, तभी भी दिया प्रकाशित है और वो तबल जी साज नहीं देते और नर्तकी का चेहरा 12:30 बजा देता है और उसको मजा नहीं आता, तभी भी दिया प्रकाशित। नर्तकी नाचती है तभी भी वो दिया ज्यों का त्यों है। राजा प्रसन्न होता है तभी दिया ज्यों का त्यों है। सभासद तालियां बजाते तभी दिया ज्यों का त्यों। नर्तकी को इनाम मिलता है तभी भी दिया ज्यों का त्यों। और नर्तकी अच्छा नहीं नाचती, उसको ताड़न मिलता है तभी भी दिया ज्यों का त्यों। सभा के लोग चले जाते तभी भी दिया ज्यों का त्यों। नर्तकी क्या है कि बुद्धि है, सभा के लोग जो है इंद्रियां हैं, राजा जो है कि मनुराम अहंकार है। ये जब खुश होता है तभी भी तुम दिए कि नहीं साक्षी, इसके सुखी खुशी के साक्षी हो। ये तुम्हारी बुद्धि नाचती है तक धिना धिन 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 धा धिम 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 तक 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 धिन धा करती है, उस समय भी तुम देखते हो। और तुम्हारी बुद्धि उल्टा करती है तभी भी तुम देखते हो। तुम सब के प्रकाशक, एक असंग असंग ज्योत प्रकाश स्वरूप। बुला शाह ने इसी बात को कहा कि चांदना कुल जहान का तू, तेरी आंखों का, तेरी बुद्धि का, तेरे मन का, तेरे अहंकार का। अहंकार कभी तो धन का, धन को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी तो मित्रों को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी तो विद्या को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी मकान को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी बैंक के पैसे को मेरा मानकर गर्व लेता है। तो ये अहंकार रूपी राजा कभी मुझ को ताव चढ़ाता है, कभी मुझे नीची करता है। उस सब को तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ईमानदारी से तो कहो जरा। हाँ, तुम्हारा अहंकार धन धन का गर्व करता है तभी भी आपको लगता है कि पैसे तो बैंक में है, जेवर तो तिजोरी में पड़े हैं, जेवर मेरे में जेवर वाली छेने है ने बाबूजी, मैंने तो रोज दर रोज एक वीटी बदलाते, दर रोज दर एक ग्रह ने एक वीटी बना दिया पीछे मारा पति छेने तो बहुत सारू छे, पण पेला कोक वखते लड़े ने એટલે પછી મને સુ આવે છે। अरे पहलू छे, आम छे, तेम छे, ये सब तुम्हारे धारणा है। गिनती को तो खबर नहीं कि मैं पहले क्यों हूं, घड़ियाल को तो खबर नहीं कि मैं पहले क्यों हूं ना, विंटी को भी पता नहीं कि मैं इसकी हूँ, घड़ियाल को भी पता नहीं इसकी, लेकिन तुम्हारा अहंकार गर्व करके विंटी हमारी, गहने हमारे, कपड़े हमारे, कपड़ों की याद आती तो जरा अकड़ आ जाती है, गरीबी की याद आती तो सुकड़ आ जाती, तो सुकड़ और अकड़ जिसको आती है वो अहंकार है। और सुकड़ और अकड़ को दोनों को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? सच बताना जरा खुदा की। अष्टावक्र यही कह रहे हैं, तुम्हारे घर की बात कह रहे हैं। बुद्ध पैदा हुए, 7 कदम चले, उसके बाद उन्होंने सनातन सत्य कहे, लेकिन अष्टावक्र एक भी कदम नहीं चले, माता के गर्भ में ही घोषणा कर दी, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं चैतन्य हूं। मदालसा के पुत्रों को मदालसा ने पैपान कराते घोषणा करा दी, और हम 40-40 साल के आखले हो गए, 30-30 साल के हो गए, 50-50 साल के हो गए, और अपने को आत्मा मानने में डरते, ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। अष्टावक्र इसको सबको उड़ा देंगे, अभी तू ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय नहीं है, तू हिंदू नहीं, तू मुसलमान नहीं, तू देही नहीं है, तो ब्राह्मण कहां से हुआ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य ने जो श्लोक रचे हैं बड़े मजे के हैं भाई। तो जैसे दिया प्रकाशता है, ऐसे ही तुम्हारा साक्षी सबको प्रकाशता है। बुला शाह ने कहा, चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सबदी आंख में चमकता हाय चांदना, तुझे सूझता अंधियारा, जागना सोना नित खाब तीनों होवे तेरे आगे कई बारा। रोज जागृत अवस्था बदल जाती है, स्वप्ने बदल जाते हैं, सुषुप्ति बदल जाती है, लेकिन उसका दृष्टा कभी नहीं बदला। जागना सोना नित खाब तीनों होवे तेरे आगे कई बारा बुलाशा प्रकाश स्वरूप है एक तेरा घट वदन होवे यारा। तेरा प्रकाश स्वरूप एक ही है। तुम जब बोलते हो कि हम ध्यान कैसे करें, मन में शांति कैसे आए, अमुक काम कैसे हो, ये कैसे करें, तो वेदांत तुम्हें कहता कि तुमने अभी अपने को जाना ही नहीं। ध्यान करे चाहे न करे ये मन और बुद्धि का विषय है। अमुक काम सफल हो और खुश हो चाहे न हो ये अहंकार का खेल है। शरीर काला चमड़ा काला होता है तुम अपने को काला मानते हो, चमड़ा गोरा होता है तो तुम अभी सियाला है, जरा चमड़ा थोड़ा खुलेगा गोरा होगा क्या, जो सियाला खादो चने आवेगी। तुम ऐसे नहीं हुए, तुम्हारे पर सियाड़ा पाक असर नहीं कर सकता, उनाड़ा पाक असर नहीं कर सकता। एक सतशिष्य था, गुरु का भक्त था। गुरु के भक्त सब अमीर होते हैं ये जरूरी नहीं है, गरीब भी होते हैं। गरीब अमीर हो सकते हैं लेकिन गुरु के भक्त बेवकूफ नहीं होते। जय जय। गरीब अमीर हो सकते लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकते। वो लारी चलाता था, बैलगाड़ी चलाता था, बोझा ढोता था बैलगाड़ी में। एक बार नमक के 10-15 बोरे, एक आध बोरे सी 30 खांड की रही होगी, बी सी डी जो शक्कर होती है शक्कर वाले से समझते हैं, 2-4 बोरी एक सी की एक डी की एक बी की एक ए की रही होगी, 4 बोरी शक्कर की 10 बोरी नमक की ले जा रहा था कहीं। एकाएक बारिश हुई और मूसलधार बरसात हुई, नाला चला, गाड़ा फंस गया, जोरों का पानी बहाव में निमक बह गया, धड़ाके हुए, मेघ गर्जा, बैल छूट गए, बिजली चमक रही है, वो आदमी अकेला रह गया, बैल भाग गए, गाड़ा लुढ़क रहा है, निमक और शक्कर तो बह गई पहले ही, तभी भी उसके चित्त में क्षोभ नहीं हो रहा है, बिजली तड़ाके दे रही है। वो बोलता है कि बिजली मैं निमक नहीं हूं कि बह जाऊंगा, मैं शक्कर नहीं के पिघल जाऊंगा, मैं बैल नहीं के भाग जाऊंगा, तेरी रोशनी में अपना रास्ता तय करके दिखाऊंगा। तू क्या समझती, ऐसे ही तुम उस परमात्मा की रोशनी में अपना तय रास्ता तय कर लो तो समझ लेना कि तुम किसी गुरु के शिष्य हो, नहीं तो तुम मन के शिष्य हो। गुरु के शिष्य हो जाना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से गुरु के शिष्य और भीतर से मन के शिष्य हो जाते हैं। मन के शिष्य नहीं, गुरु के शिष्य। गुरु का अर्थ है, किसी ने बच्चे ने आज पूछा कि गुरु शब्द का अर्थ क्या, ओम का अर्थ क्या, एक एक को बताएं तो समय नहीं है, इसलिए जाहिर में बताया जाएगा। ओम माना क्या, अकार उकार मकार और अर्धमात्रा। अकार स्थूल जगत का संकेत है, उकार सूक्ष्म जगत का संकेत है, और मकार कारण जगत का अथवा विश्व तेजस प्राज्ञ। ये तीन जो अधिष्ठाता, जैसे एक नगर है तो नगर पालिका का जो हेड है चेयरमैन, एक राष्ट्र है तो राष्ट्रपति है, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में जो स्थूल तत्व है, स्थूल जगत का जो हेड, उसको विश्व कहते हैं, सूक्ष्म जगत के हेड को तेजस कहते हैं, कारण जगत के हेड को प्राज्ञ कहते हैं। अकार उकार मकार, विश्व तेजस और प्राज्ञ, ये ओम में तीन मात्राएं तो आ जाती है, अकार उकार और मकार, इन तीनों के ऊपर है अर्धमात्रा, उसको बोलते हैं तुरिया। ओम माना स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन सत्ता तीनों को प्रकाशने वाला, तीनों के ऊपरी, तीनों का सत्ता स्फूर्ति चेतना देने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है, उसका नाम ओम है और वो मैं हूं। जय जय। तुम्हारे स्थूल जगत का, तुम्हारी जागृत अवस्था का, तुम्हारे स्वप्न अवस्था का, तुम्हारी सुषुप्ति अवस्था का प्रकाशक कोई हवा बहुआ कौआ नहीं है, तुम ही तो हो ना। जैसे इस शरीर की जागृत स्वप्न सुषुप्ति का तुम प्रकाशक हो, इस शरीर के स्थूल सूक्ष्म और कारण के तुम जानकार हो, ऐसे ही समष्टि के स्थूल सूक्ष्म और कारण को जो जान रहा है उसी का संकेतिक नाम है ओम। तस्य वाचक प्रणव, वो परमात्मा का नाम है, परमात्मा का स्वाभाविक स्पुरना है और सब में अपने आप ध्वनि हो रही है। लेकिन हम इतने बहरे हैं, इतने बहिर्मुख हैं, तो उस ओमकार को बाहर से भीतर से नहीं सुन पाते, इसलिए गुरुदेव देते हैं मंत्र। गुरु शब्द का अर्थ क्या है, गुरु वाह गुरु। गुरु गीता में लिखा है कि और अक्षर सब एक आनी है, गुरु शब्द जो है 16 आनी मंत्र है। गुरु माना बड़ा, गुरु शिखर, बड़ा शिखर। जो बड़ा शिखर है, जो गुरु है, गुरु का मतलब जो हिले नहीं, जो अपना स्टैंड छोड़े नहीं। एक अर्थ उसका यह है, गुरु माना हजार हजार आंधियां आए, हजार हजार हर्ष हो, हजार हजार शोक हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के शरीर में हजार हजार उपद्रव आए और जाए, फिर भी जो उनसे प्रभावित न हो उसका नाम है गुरु। एक अर्थ यह है। दूसरा अर्थ है गु माना अंधकार और रू माना प्रकाश। अंधकार को छोड़कर प्रकाश के तरफ जो ले जाते हैं उन महापुरुषों को भी हम गुरु कहते हैं। कबीर ने कहा, सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। जब बदलता है तो मन बदलता है, जब बदलता है तो शक्लें बदलती है, चेहरा बदलता है। इन सब की बदलाहट होने पर भी जो नहीं बदलता है उसको आत्मा कहते हैं, उसको मैं कहा जाता है। तो गुरु शब्द का अर्थ आपने समझ लिया, जो अचल है अपने स्वरूप में, जो हमें संसार के समुद्र से निकालकर परमात्मा से मिला दे, जिनका एक हाथ परमात्मा में और दूसरा हाथ हमारी परिस्थितियों में है, उन पुरुषों का नाम गुरु है। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे बरम की कोट। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। आसुमल को यदि गुरुजी नहीं मिलते तो खान की बोरियां बेचता, या तो तेल के डिब्बे रवाने करता है, ट्रकें रवानी करता, और जैसे संसारी लोग हाई हा करके अपना जीवन खिलौनों में व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसा ही जीवन होता। नरेंद्र को गुरु नहीं मिलते तो वो कोई कॉलेज में प्रोफेसर होता, रामतीर्थ को गुरु नहीं मिलते तो वो प्रोफेसर होते। गुरु का अर्थ है जो माता पिता ने जन्म दिया है, काम क्रोध से प्रेरित होकर, कामनाओं से प्रेरित होकर, पालती पोसती है तो मोह से प्रेरित होकर। कोई कोई माँ होगी जो प्रेम से प्रेरित होकर पालती है, लेकिन माँ भी चाहती है कि बड़ा हो तो सुख दे, बड़ी हो तो सेवा करे, ससुराल जाए तो मेरा नाम निकाले। बाप चाहता है कि बड़ा हो तो मेरे बुढ़ापे का बोझा ढोएगा, लेकिन गुरु जी ऐसा कभी नहीं सोचता कि शिष्य को साक्षात्कार हो और मेरा नाम निकाले, शिष्य बड़ा हो जाए और मेरी सेवा करे, शिष्य परमात्मा को पाले और मेरे को कुछ परमात्मा से लेकर दे दे ना। एक फकीर के पास जिज्ञासु गया, बोले महाराज जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, जीसस बोलता है कि मालिक इनको माफ करना, तेरी मर्जी पूर्ण हो। सुकरात को जहर दिया, वो खुश खुश पी गया, जैसे कोई नाटक में कोई आदमी जहर पीता हो। सुखदेव पर कंकड़ पत्थर लगे, सुखदेव खिन्न न हुए। रघुगण राजा ने जड़ भरत को पालखी उठवाई, कोड़े मारने का दम दिया, डांटी दी, लेकिन जड़ भरत के चेहरे पर करचली न पड़ी, दुख की एक रेखा न छाई। चाहते तो श्राप दे देते, चाहते तो उसको सुना देते, लेकिन जड़ भरत के चेहरे पर कोई अभिमान, कोई राग, कोई द्वेष, कोई खिन्नता न दिखी। दत्तात्रेय को भीलों के राजा यज्ञ कर रहे थे, दत्तात्रेय को पकड़ गए बलि देने के लिए, दत्तात्रेय के चित्त में कोई शोभ नहीं हुआ। तो महाराज, इन पुरुषों के चित्त में शोभ नहीं होता। जब ये ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म है, ये आत्मा है तो हम भी आत्मा है। हम लोगों को तो जरा सा कोई तू कह देता है तो दुख होता है, जरा सा कोई अपमान का शब्द कह देता है तो परेशानी होती है। इनको शूली पे चढ़ाया गया तो भी इनको दुख नहीं होता है, घोर अपमान किया गया तो भी दुख नहीं होता। इसका कारण क्या है? फरीद ने नारियल दिया, कहा कि जाए इसको तोड़ किया, लेकिन याद रखना कि इसका जो गिरी है वो न टूटे, इसको खोल कर आ गिरी साबित रहे पूरे का पूरा। बोला ये मुश्किल है, गया जो काचली और गिरी दोनों जुड़ी हुई थी, हरा नारियल था, खूब पानी भरा था, खूब समझ के भी तोड़ा तो जो काचली टूटती है तो गिरी भी टूट गई। गिरी और काचली एकदम जुड़ी है, कितना भी संभालो तो भी टूट जाती है, क्योंकि उसका आपस में इतना मेल है कि जानो बस दोनों एक हो गई है। वरना तो गिरी अलग है, काचली अलग है, काचली अलग है और उसका खोखा ऊपर का अलग है। पर इन्हें दूसरा नारियल दिया। बोले अच्छा जा इसको तोड़ के आ। उसने हिलाया तो देखा कि हाँ ये तो अलग हो सकती है, गिरी एकदम अलग हो सकती है, इसको कोई चोट नहीं लगेगी। बोले बाबू इसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं, जो देह से एकदम अपने को अलग मानते हैं उसको मौत की कोई चोट नहीं लगती, और जो अपने को देह मानते हैं संभल संभल के जीते हैं तो भी दिन में और रात में सुबह और शाम में जीवन में और मौत में चोटें ही चोटें लगती है। देह अध्यासी जितना 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 देह अध्यास प्रगाढ़ है उतनी उतनी चोटें ज्यादा लगती है। देखो बच्चा है उसको देह अध्यास अभी विकसित नहीं हुआ, बच्चे के आगे तुम गाली दे दो तो भी हंसेगा, बच्चे को मिठाई दे दो तो भी हंसेगा, बच्चे के पास से कोई चीज उठा लो तो भी उसको कोई रंज नहीं होगा, क्योंकि अभी ये मैं हूं और ये मेरा हूं ये विकसित नहीं हुआ। ऐसे किसी फकीर के आगे से तुमने कुछ धर दिया और कुछ उठा लिया तो भी उनको चोट नहीं लगती। बच्चे के अंदर अभी अहंकार विकसित नहीं हुआ, अभी ममता विकसित नहीं हुए, और ज्ञानी की ममताएं बाधित हो गई है। फरीद ने कहा कि तुम तो ऐसे नारियल हो कि अभी करचली बंधी नहीं, मलाई लगी नहीं, अब तुम तो हरे नारियल जैसे हो। तुम्हारे अंदर इतना तादाद में है देह का कि बस देह के बाल पकते तो बोलते मेरे सफेद बाल हो गए, चमड़ा काला होता है तो बे मैं काला हो गया, जरा सा भूख लगती है प्राणों को तो मेरे को भूख लग गई मैं मर गया, प्राणों को प्यास लगती तो मेरे को प्यास लगी मान रहे हो। तुम इतने कच्चे नारियल हो कि कितना भी संभाल संभाल के तोड़ा जाए तो भी तुम्हारी कौरचली अलग नहीं होती। जीसस, बुद्ध, जनक, अष्टावकर, शुकदेव जी महाराज, जड़ भरत ऐसे पक्के हैं कि बस ममता रूपी पानी सूख गया है, कौरचली अलग गिरी अलग। ममता का पानी सूख जाए, और ममता का पानी अज्ञान से बढ़ता है और ज्ञान से सूखता है, ज्ञान की अग्नि से वो पानी सूख जाता है। जैसे नारियल धूप में रखो तो जल्दी सूख जाते हैं, ऐसे ही विवेक की अग्नि में रखो अपने को तो तुम शरीर से पृथक हो जाओगे। तुम अपने कभी कभी ट्राई करो, जब चल रहे हो छाया देखो, देखो कि जैसे छाया तुम्हारे से अलग है, छाया जिसकी है वो और छाया एक नहीं, ऐसे ही ये शरीर भी मेरी छाया है, और ऐसी छाया तो मेरी कितनी कितनी हुई। छाया भले पर्वत की हो तो भी तुच्छ है, छाया भले सुंदर हो गगन आकाश मार्ग में पहुंचती हो फिर भी छाया तो छाया है। ऐसे ही देह और देह की सत्ताएं कितनी भी बड़ी लंबी चौड़ी हो लेकिन शुद्ध है। और मजे की बात है कि जितनी जितनी देह और देह की सुंदरता बढ़ती है, सत्ताएं बढ़ती है, और आत्मज्ञान से आदमी विमुख है, उतना उतना वो आदमी अभागा रहता है। प्रसिद्ध कथा है कि एक फकीर ले गया भिक्षा पात्र, लोग बोलते हैं कि सिकंदर के पास ले गया था, कोई बोलते किसी के पास, कहानियां हैं घड़ी हुई कहानियां होगी। भिक्षा पात्र ले गया, राजा दानी था, सुबह सुबह दान करने में कोई भी दान लेने आए तो उसको उसके बर्तन को भर देते थे। दान का फल होता है पुण्य कर्म करने से अंतकर्ण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतकर्ण होता है तो फकीरों के भी दर्शन हो जाते। एक सच्चा फकीर पहुंच गया, बोला भिक्षा मांगने को आया हूं तेरे पास, मैंने सुना है तू भिक्षा पात्र भर देता है, मेरे इस भिक्षा पात्र को भर दे, जिससे चाहे तू भर दे। सम्राट को गर्व था कि अन्न से क्या भरना, अशर्फियों से भरो। अशर्फियां डालता गया भरने को, फिर उसने कुछ जोर मारा लेकिन अशर्फियां खलास हो रही है, भरा नहीं जा रहा। आखिर वो तंग हो गया, सम्राट पूछा कि महाराज ये क्या है, ये भिक्षा पात्र है क्या, आखिर ये क्या है जादू। बोले तेरे जैसे कि किसी की खोपड़ी है, तेरे जैसे कि किसी की खोपड़ी है और कुछ नहीं, देख खोपड़ी तो है। इस मनुष्य की खोपड़ी में कितना भी दो, कितना भी रखो, कितना भी मकान दुकान धन मिल जाए, फिर भी अजी जो ये अन्या खपे 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 में खप जाता है मुआ। ओम, ये तेरे जैसे की खोपड़ी है। सम्राट के चित्त में साधु के वचन ठहर गए, उसको वैराग्य आया। बोला महाराज फिर इस खोपड़ी को भरे कैसे। बोले ईश्वर के सिवा ये खोपड़ी किसी चीज से भरती नहीं, परमात्मा के सुख के सिवा किसी सुख से ये खोपड़ी भरती नहीं, आत्मलाभ के बिना और किसी लाभ से खोपड़ी भरती नहीं है, दिल भरता नहीं, तृप्ति नहीं होती, क्योंकि परमात्मा के सिवा जो कुछ है वो अपूर्ण है। एक परमात्मा ही है जो पूर्ण है, पूर्ण मदह पूर्णमिदम, वही पूर्ण है। उसी का राज तुझे समझ में आ जाए, उसी के गीत तेरे हृदय से गूंजने लग जाए तो ये खोपड़ी भर सकती है, वरना नहीं। बोले महाराज तो फिर बताओ मैं परमात्मा को कैसे प्यार करूं, परमात्मा को कैसे पाऊं। महाराज ने कहा तूने कभी किसी को प्यार किया है। बोले महाराज प्यार क्या करना, संसार में मैंने हुकूमत की है, प्यार व्यार नहीं जानता। मैग्डलेन के बगीचे में जीसस आराम कर रहे थे। मैग्डलेन प्रसिद्ध वैश्या थी, उसके वहां से बड़े बड़े सम्राट खाली हाथ लौटते, कभी कभी मुलाकात न कर पाते, ऐसी वो गर्व वाली थी, प्रसिद्ध और सुंदर। मैग्डलेन की नजर पड़ी जीसस पर, आई जीसस को बुलाने के, चलिए मेरे महल में आराम करिए। जीसस बोलता कि पहले आती तो चल पड़ते, अब समय हो गया, मैं जा रहा हूं। जीसस को बोलती कि तुम्हारे हृदय में कुछ प्यार नहीं, मैं मैग्डलेन हूं, मेरे द्वार से बड़े बड़े सम्राट खाली चले गए, और मैंने जीवन में यदि कहा है तो पहली बार तुमको कहा है कि चलिए मेरे महल में, चलिए चले। और तुम्हारे पास प्यार का बदला चुकाने के लिए 10-5 मिनट समय नहीं, तुम कितने रूखे हो, तुम्हारे पास कोई दिल नहीं, तुम प्यार की कीमत नहीं समझते। जीसस कहते हैं कि पगली, मैं तुझे जितना प्यार करता हूं उतना और किसी ने नहीं किया होगा, अभी समय नहीं, समय लेकर कभी आऊंगा। शिष्य चुंडली खंड रहे कि ये गुरुजी क्या कर रहे हो। बोले चुप रहो, लोग चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं भाषा सही बोल रहा हूं। वो बोलते जब प्यार करते तो चले चलते। बोले ना, मैं तुझे प्यार करता हूं, राजे महाराजे तो तेरी हड्डियों को प्यार करते, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के पुतले को प्यार करते, और मैं तुझे ही प्यार करता हूं और तेरे ध्यान में मग्न रहता हूं पगली। शिष्य घबराए कि गुरु मैग्डलेन के ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन गुरु को मैग्डलेन का पुतला नहीं दिख रहा है, गुरु को मैग्डलेन के अंदर भी वो साक्षी दृष्टा आत्मा दिख रहा है, और शिष्य को मैग्डलेन का पुतला दिख रहा है। देख दोनों रहे लेकिन नजर नजर में फेर है।